बादल राग पृष्ठ संख्या 268। बादल राग इसी और छवि का प्रतिफलन है। उनकी बादल राग शीर्षक से रची गई 6 कविताएं। वैसे यह नहीं है कि बादल के क्रांतिकारी रूप के चित्रण में निराला पहली बार बादल राग की इन्हीं कविताओं में उतरते हैं। इसके पहले भी और बाद की अनेक वर्षा कविताओं में भी निराला ने इस भावभूमि की अनेक रचनाएं की हैं। स्वयं अनामिका की बादल गरजों, जिसका उदाहरण हम ऊपर कहीं दे चुके हैं, इसी भावभूमि की कविता है। ग्रीष्म में तप्त धरा, निदाघ से पीड़ित जन, इन सब का वर्णन इस कविता में भी आता है। इसी तरह परिमल की एक कविता स्वागत भी बादल राग क्रम की तीसरी कविता सिंधु के अश्रु की भूमिका लगती है। उसमें भी अनेक विघ्न बाधाओं को पार करके आने वाले प्रियदर्शन बादल के स्वागत की सूचना कवि देता है। बादल राग की तीसरी कविता में भी सब्यसाची के पौराणिक बिंब द्वारा निराला ने ग्रीष्म के बादल प्रियदर्शन बादल के रथारूढ़ होकर लौटने का चित्रण किया है। पृष्ठ संख्या 269। बादल राग की इन कविताओं से निराला के काव्य व्यक्तित्व का अत्यंत सशक्त उद्घाटन मिलता है। विषय वस्तु के दृष्टिकोण से उन्होंने जिस सजगता से एक सचेत कलाकार की भांति एक नई भावभूमि की अवतारणा की है, उसी तरह भाषिक संरचना, कलात्मक शब्दबंध, बिंबों का अनुकूल संयोजन तथा नई बिंबात्मक उद्भावनाएं इस कविता में अपनी चरम कलात्मकता के साथ उद्घाटित हुई हैं। इन सभी दृष्टियों से बादल राग की कविताएं भारतीय काव्य की संपूर्ण परंपरा में एक नया द्वार खोलती हैं। ना तो मध्यकालीन कवि के लिए यह संभव था, न राजकुमारों का जीवन बिताने वाले रविंद्रनाथ के बस की यह बात थी। सिलाई दाह में बैठकर पूर्ण बंगाल की घनघोर भयावनी विनाशकारी वर्षा के जो दृश्य चित्र रविंद्रनाथ ने खींचे हैं, अगर वह निराला की तरह कठिन जीवन संघर्षों के बीच से गुजरे होते, अगर उन्होंने स्वयं हाण मात्र शेष किसान की ऊपर उठी हुई प्रतीक्षारत आँखों की व्यथा जानी होती, तो वर्षा का भयंकर चित्र खींचने की जगह हुए अपनी विराट प्रतिभा के बल पर वर्षा कविता को इस नई रचनात्मक दिशा की ओर मोड़ सकते थे। तब उन्हें हाय पथवासी, हाय गतिहीन, हाय गृहहारा कहकर सिर्फ गलदस्र करुणा नहीं अभिव्यक्त करनी पड़ती, लेकिन आभिजात्य में पले रविंद्रनाथ के लिए यह संभव नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि वह वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों से परिचित ना रहे हों, लेकिन लगान वसूल करने वाले और जमींदारी की देख रेख में नियुक्त रविंद्रनाथ के लिए शोषक और शोषित की वर्ग भूमिका समझना और उसमें निराला की तरह शोषित की पक्षधरता ग्रहण करना अत्यंत कठिन था। इसी भूमिका में आकर निराला रविंद्रनाथ से आगे एक विराट जनकवि की भूमिका ग्रहण करते हैं। सिर्फ बादल राग की इन कविताओं में ही नहीं, काव्य आभिजात्य से अपनी मुक्ति के संपूर्ण प्रयास में निराला ने जिस तरह के नए काव्य की रचना की है, उनके शब्दबंध, उनकी भाषिक संरचना, उनकी संवेदनागत नवीनता और अनपेक्षिता के आगे रविंद्रनाथ की भांग भांग कारा या पुरातन भृत्य जैसी कविताएं कहीं नहीं ठहरती। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निराला ने वर्षा के विनाशकारी रूप की उपेक्षा की या उसके अनुभव से वह वंचित थे, बल्कि यह कि भयंकरता की उस अनुभूति के उन्होंने क्रांति और विप्लव की नूतन भूमिका में रख दिया। बादल राग की सभी कविताएं इस विप्लव की भूमिका में नहीं रखी गई हैं। सबकी भावभूमि अलग अलग है। पहली कविता वर्षा के स्वरारोह और घटाटोप के ध्वन्यात्मक चित्र से संबद्ध है। इस स्वरारोह को निराला ने अद्भुत शब्द लास्य में बांधा है। यदि राम की शक्ति पूजा का शब्दबंध और उसकी भाषिक संरचना शब्द तांडव के स्थापत्य का अभूतपूर्ण उदाहरण है, तो बादल राग की पहली पृष्ठ संख्या 270 कविता में शब्दों का कोमल नृत्य उतनी ही गहराई से निराला ने संयोजित किया है। इस कविता की पूरी भाषिक संरचना में श, ळ, ल, व, का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है और इसकी सारी ध्वनि संयोजना हिंदी की प्रकृति के निकटतम है, लेकिन सिर्फ इस कविता में निराला ने ध्वनि संधान और उसका असाधारण संयोजन ही नहीं किया है। कविता का प्रत्येक शब्द इस दृश्य अथवा श्रव्य बिंब का सृजन करता चलता है और ये बिंब अर्थ संकेतों की अपरिमित संभावनाओं से भरे हुए हैं। इससे भी आगे चलकर निराला ने वर्षा के संपूर्ण स्वरारोह, उसके सौंदर्य, उसके खलबलाते आवेग को अपनी निजी आंतरिक रचनात्मकता से जोड़ दिया है। वह केवल हरहराती हुई धारासार वर्षा का एक चित्र ही नहीं रह जाता, बल्कि कवि के अनंत असीम रचनात्मक प्रसार का एक बिंब भी बन जाता है। कविता का संपूर्ण अभिधार्थ चल रे चल मेरे पागल बादल कह देने से एक गहरी व्यंजना में बदल जाता है और एकाएक संपूर्ण कविता का अर्थ एक नए संदर्भ में नए सिरे से हमारे सामने चमक उठता है। इसी को मैंने कहा है कि निराला ऋतु के माध्यम से अपने जीवन बिंब को ही बार बार अवतरित करते हैं, उसे पाते हैं या उसे खो देते हैं। इस कविता में वर्षा के स्वरारोह के माध्यम से निराला ने अपने ही कवित्व की अपरंपार उद्दाम वेग को स्वर दिया है। इसीलिए यह कविता सिर्फ एक तटस्थ वर्षा चित्र ना रहकर दोहरे अंतर्वर्ती अर्थों की व्यंजना से पूर्ण है। वर्षा की भांति ही रचना प्रत्येक चेहरे पर सभी के प्राणों में वही अमर राग छाया हुआ है। कवित्व के उसी उद्दाम उल्लसित वेग का प्रवाह झर रहा है। कवि ने बादल को अपन गर्जन भैरव संसार से निकलकर बरसने वाली रसधार कहा है। वर्ष का हर्ष इस उपाधि से उसे संबोधित किया है। फिर उस वर्षा के ध्वनि चित्र का प्रभाव अंकित किया गया है और अंततः कवि स्वयं इच्छुक है अपने इस अनंत प्रवाह का, इस अमर राग का उद्गम स्रोत जानने के लिए। वह कौन सी जगह है, दुर्गम कंदराओं में या विशाल अनंत समुद्र में या आकाश के असीम कोने में, कहाँ से कवित्व का, रस का, जीवन का यह खलबलाता पागल स्रोत प्रवाहित हो रहा है। अविराम अनवरत अनुभूति का, संवेदना का वह अनंत वत्स, रचनात्मकता की यह गंगोत्री कहाँ है? जानने की इसी उद्दाम इच्छा में बादल राग की पहली कविता समाप्त होती है। ध्वनि संयोजन, स्वरारोह और अर्थ गरिमा का अद्भुत संगम इस पहली कविता में दृष्टव्य है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निजरोर। पृष्ठ संख्या 271। झर 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 निर्झर गिरिसर में घर मरु तरु मरमर सागर में सरित तड़ित गतिचकित पवन में मन में बिजन गहन कानन में आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निजरोर। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल चल रे चल मेरे पागल बादल। इस कविता के ध्वनि संयोजन के सामने रविंद्रनाथ की पाताय पाताय टुपुर टुपुर नूपुर मधुर बाजे जैसी पंक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। रविंद्रनाथ अपने ध्वनि संयोजन से एक तथ्यात्मक चित्र द्वारा अपनी उल्लसित मुद्रा भर प्रदर्शित करते हैं। निराला की तरह ही सारे स्वर संगम को दुहरी तिहरी अर्थ व्यंजनाओं से नहीं जोड़ते। वह वर्षा को अमर राग कहकर संबोधित नहीं करते। उनमें उस आकांक्षा का नितांत अभाव है जिसे निराला ने इस कविता में व्यक्त किया है। हे मेरे अमर राग, हे संवत्सरों के आनंद, तुम अपना संगीत संपूर्ण प्रकृति पर ही निछावर ना करो। मेरे अंतर मन को भी अपने संगीत, अपनी रसधार से आप्लावित कर दो। मन जो अस्तब्ध जनहीन वन प्रदेश की तरह सन सन कर रहा है, मेरा घर जो एक निचाट जलते हुए रेगिस्तान की तरह धू धू करता फैला हुआ है, ये वन घर मरुस्थल नदी तरु मरमर निर्झर गिरि समुद्र केवल बाहरी प्रकृति के उपादान नहीं रह जाते, कवि के अंतर मन के बिंब बनकर चमक उठते हैं। यह वही निर्झर है जिसके रेत ज्यों रह जाने की बात निराला ने आगे चलकर की है। यह वही तरु मरमर है जो आगे चलकर ठूंठ है। यह आज में बदल जाता है, या वही आनन है जो आगे चलकर निष्प्रभ गालों के सहज स्वीकार में बदल जाता है। यह वही घर मरु है जिसके बारे में गालिब ने कभी कहा था, उग रहा है दरो दीवार पर सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। गालिब के घर और मन अलग अलग थे। मन बियाबानों में भटक रहा था और घर में हरियाली उग आई, लेकिन निराला में वह अंतर्गृह एक ही है, अलग अलग नहीं। इस तरह इस छोटी सी कविता का अर्थ संभार अपरिमित है। निराला ने उसके पृष्ठ संख्या 272 सामासिक पदों में अनंत अर्थ की संभावनाएं छोड़ रखी हैं और ये अर्थ कवि के अभिप्रेत अर्थ से कहीं भी टकराते नहीं, बल्कि उसे और अधिक प्रोद्भासित करते हैं। बादल राग क्रम की दूसरी तथा छठी ये दो कविताएं क्रांति की भूमिका से संबद्ध हैं। इन दोनों में निराला ने बादल के गर्जन भैरव संसार को क्रांति की भूमिका में रख दिया है। दरअसल अपने अपने ढंग से इस क्रम की सभी कविताओं के महत्वपूर्ण होने के बावजूद सर्वथा नूतन उपलब्धि के रूप में सबसे अधिक महत्व इन्हीं दोनों कविताओं का है। बादल के पुराने परंपरागत बिंब और उसकी संपूर्ण अभिधात्मकता को जरा सा तोड़कर डिस्ट्रोट निराला ने उसमें से सर्वथा एक नए और नई वर्ग चेतना की सृष्टि की है। इन दोनों कविताओं में से इस क्रम की दूसरी कविता का विस्तृत अर्थ निराला ने स्वयं प्रबंध प्रतिमा में छपे एक निबंध मेरे गीत और कला में किया है। वह विश्लेषण दर्शनीय है। निराला ने इसमें बताया है कि किस तरह इस कविता का प्रत्येक शब्द दोहरी अर्थ व्यंजना से भरा हुआ है और सिर्फ अंत की एक पंक्ति गर्ज्यो विप्लव के नव जलधर से ही पूरी कविता दूसरे अर्थ संभार से प्रकाशित उठती है। सारा प्लावन, सारी भयावहता और विनाश विप्लव का प्लावन बन जाता है और बादल की सारी विनाश लीला उसकी प्रचंड डमरू ध्वनि एक विशेष दिशा में केंद्रित हो जाती है। उसका प्रचंड वज्र घोष, उसका आतंक, उसका उन्माद, उसकी स्वच्छंदता, विराटता और अपरंपार क्रोध किसके ऊपर गिरता है? उनके ऊपर जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी सारे कृषक समाज को अपने फायदों के अनुकूल बना रखा है, जो कभी कोई पीड़ा महसूस नहीं करते, जो सुरक्षित और निश्चिंत हैं। बादल राग क्रम की यह दूसरी कविता पूर्णतः एक संबोधन परक कविता है। इसकी भाषिक संरचना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही संबोधनात्मकता है। पूरी कविता में वास्तव में सिर्फ एक ही क्रियापद गर्जो का प्रयोग हुआ है। बीच में या तो पूर्वकालिक क्रियाओं के संकेत चिन्ह हैं या क्रियापदों से बनाए विशेषणात्मक संबोधन। इन्हें विस्मयादि बोधक अव्ययों की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। शेष पूरी कविता में सामासिक पदों द्वारा संबोधनात्मक क्रिया रहित वाक्य है। प्रत्येक इस तरह का पद विप्लवी बादल की किसी विशेषता का संकेत देता है।